व्यवस्था विवरण अध्याय 20। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखें, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है वो तेरे संग है। व्यवस्था विवरण 20:1। देखा जाए तो ये लोग तो मिस्र में दास थे, उन्हें युद्ध कला का प्रशिक्षण प्राप्त था ही नहीं, अतः उनका सबसे बड़ा डर था सेनाओं से युद्ध करना और उससे भी बड़ा रथों का सामना करना, क्योंकि उस युग में रथ ऐसे होते थे जैसे आज युद्ध में टैंक। परंतु परमेश्वर उनसे कहता है कि वे विशाल सेना और रथों को देकर न डरें, क्योंकि उनका यहोवा जो उन्हें मिस्र से निकालकर लाया है उनके संग है। दाऊद ने अपने भजन में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता 23:4। परमेश्वर की उपस्थिति का बोध सबसे बड़ा भय निवारक है। जब मैं भयानक परिस्थितियों का सामना करता हूं, तब ये जानना कि परमेश्वर मेरे साथ है एक महान संतावना का कारण होता है। जब जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति को भूलता हूं, तब तब मैं भयभीत हो जाता हूं। ये एक सच्ची संतावना है कि हम कठिनाइयों में जान ले, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। अब उन्हें बैरियों का सामना ऐसा करना है कि जैसे वे युद्ध के लिए तैयार है। हे इसराइलियों, सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से ये कहें कि तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण ना किया हो, तो वो अपने घर को लौट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। व्यवस्था विवरण 20:3-5 पद। जिसने नया घर बनाया हो और वो उस घर में रहने से पहले ही युद्ध में मर जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने घर तो बनाया परंतु वो अपने घर में रह नहीं पाया और मर गया। अब कोई और उसके मकान में रहता है, अतः उसे युद्ध में जाने से छूट प्रदान की गई है। और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हो, वो भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा न हो कि वो संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। व्यवस्था विवरण 20:6। ये भी उचित नहीं होगा कि कोई दाख की बारी लगाने में परिश्रम करें और उसका फल खाने से पूर्व ही युद्ध में मारा जाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हो परंतु उसको ब्याह न लाया हो, वो भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा न हो कि वो युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसे ब्याह कर ले। व्यवस्था विवरण 20:7। जिनकी मंगनी हो गई है और विवाह न हुआ है, उसे भी युद्ध में नहीं ले जाना था। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से ये भी कहें कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वो भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा न हो कि उसकी देखी देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। व्यवस्था विवरण 20:8 पद। इस प्रकार जो शेष रह जाते हैं वे वास्तव में युद्ध करने योग्य लोग हैं। ये लोग ना तो मरने से डरते थे और ना ही अपनी होने वाली बीबी की चिंता जैसी कोई बात उनके मन में थी। ये लोग वास्तव में लड़ने मरने के लिए तैयार थे, ऐसे लोगों को युद्ध में जाना था। डरपोक लोगों को निकाल देने का विचार बहुत अच्छा था, क्योंकि यदि युद्ध में वे पीठ दिखाकर भागे तो दूसरे योद्धाओं पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, उनका साहस टूट जाएगा और अति संभव है कि वे भी पीछे हट जाएं। अतः ये एक बुद्धिमानी का निर्णय था। इस प्रकार जो बच रहे थे वे युद्ध के योग्य उचित थे। जब वे किसी नगर को जीतने जाएं, तो सबसे पहले वहां शांति की घोषणा करें। यदि वो आत्मसमर्पण कर दे तो ठीक है, परंतु यदि वे युद्ध करें तो वहां प्रवेश करके सब पुरुषों को मार डालना, परंतु स्त्रियों और बच्चों को छोड़ देना जिन्हें दास बनाए जाए, उनके मावेशी और अन्य सामान लूटकर अपने काम में लाना। इस प्रकार उन नगरों से करना जो तुझसे बहुत दूर है, और इन जातियों के नगर नहीं हैं, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, परंतु उनको अवश्य सत्यनाश करना, अर्थात हितियों, एमोरियों, कनानियों, परिजियों, हिबियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। व्यवस्था विवरण 20:15-17 पद। उनसे शांति का समझौता नहीं करना, उनका सर्वनाश कर देना। ऐसा न हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं वैसे ही करना तुम्हें भी सिखाएं, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। जब तो युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहें, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें ना काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य है कि तू उनको भी घेर रखें? व्यवस्था विवरण 20:18-19 पद। उन जातियों के संपूर्ण विनाश का उद्देश्य एकमात्र ये था कि उनके व्यभिचारी से पूर्ण रीति रिवाजों का उन्मूलन किए जाए, अन्यथा वे इसराइल में अपना स्थान न बना ले और उन्हें भ्रष्ट न कर दे। परंतु उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा में कुछ नगरों को नाश नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वे भ्रष्ट हो गए और वे अन्य जातियों के सदृश आचरण रखने लगे। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया और उस देश से निकाल बाहर किया। अनेक लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि परमेश्वर किसी संपूर्ण जाति के विनाश की आज्ञा दे, परंतु यदि आप परमेश्वर के स्थान पर हो और उन अन्य जातियों की उपासना विधि के घृणित कामों को देखें जिनका उल्लेख मुंह पर लाने में ही शर्म आती है, तो आप परमेश्वर की इस आज्ञा को उचित ही मानेंगे। उन्हें तो अपने व्यभिचार और पाशविक अभ्यासों के कारण वैसे ही नाश होना था, परंतु अपने विनाश से पहले वो परमेश्वर की प्रजा को अपनी इस पूजा विधियों द्वारा, जो अत्यधिक हीन एवं घृणित थी, भ्रष्ट कर देते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो कि आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, आप मैदान में खेलते बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। अब आप देखते हैं कि एक सुंदर सा कुत्ता वहां आ रहा है, जिसका स्वभाव एक सामान्य कुत्ते से अलग है। वो फाटक को काटता है तो कभी पत्थर को फाड़ खाने की कोशिश करता है। आप तुरंत समझ जाते हैं कि वो कुत्ता पागल हो गया है। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसे पूर्ण कि वो कुत्ता अंदर आकर बच्चों को काटे, आप उसे मार डालेंगे या खड़े खड़े देखते रहेंगे और कहेंगे, देखो वो कुत्ता पागल है, देखो वो बच्चे को काट रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। उसे बच्चों को तो नहीं काटना चाहिए, बच्चों को उससे दूर रहना चाहिए आदि। मैं तो आपको खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगा जब आप जानते हैं कि वो पागल है और वो तो मरेगा ही, तो उसे आप मार क्यों नहीं डालते कि बच्चे तो बचे रहें? वे अबोध बच्चे क्यों मारे जाएं? आप उसे मार डालेंगे तो गुनाह नहीं करेंगे। आपका गुनाह तो ये होगा कि आपने उस कुत्ते को जान से नहीं मारा। उन बच्चों की मौत आपके सिर पर होगी। आपका उत्तरदायित्व यही है कि आप उस कुत्ते को मार डालें और बच्चों की रक्षा करें। इसी प्रकार वे अन्य जातियां थी जो अपने ऊपर विनाश ला रही थी, वरन विनाश हो चुकी थी। वे परमेश्वर की प्रजा को भी भ्रष्ट कर रही थी और उन्हें पाप करने की प्रेरणा दे रही थी, जिसका प्रतिफल परमेश्वर का दंड है। यही कारण था कि परमेश्वर ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनको मार डाला। जिन जातियों में ये घृणित काम नहीं थे, उन्हें नाश करने के लिए परमेश्वर ने इसराइल को आदेश नहीं दिया था। परमेश्वर केवल अपने बच्चों को उन घृणित कामों से बचाना चाहता था जो वहां के निवासी करते थे। अंत में परमेश्वर उन्हें पेड़ों के विषय ये आज्ञा देता है कि वे फल वाले वृक्षों को ना काटें कि कोटा बांधा जाए। कोट बांधने के लिए वे उन पेड़ों को काट सकते थे जो फल नहीं लाते थे। फल वाले वृक्ष उनके लिए समय आने पर खाने को फल देंगे।